मार्गदर्शन।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम मार्गदर्शन के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं
हसन अब्बास
और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में इस्लामिक क्रांति की जड़ों के बारे में इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता के विचारों की चर्चा करेंगे।
ईरान में तानाशाही सरकार के पतन और इस्लामी व धार्मिक सरकार के गठन के विभिन्न कारण थे। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह रुज़मा सैयद अली खामिनई के विचार में पश्चिम, विशेषकर ब्रिटेन व अमेरिका पर पहलवी शासकों की अत्यधिक निर्भरता और अहम फैसले करने में उनकी अक्षमता पहलवी शासन के पतन के मुख्य कारण थे। पश्चिम पर पूरी तरह निर्भरता और पश्चिम की मांगों को पूरा करने की हर संभव कोशिश इस बात का कारण बनी थी कि ईरान के शासक अपनी जनता की अनदेखी करें और उसे पश्चिम की मांगों की बलि चढ़ा दें।
दूसरी ओर पहलवी शासक अपनी स्वदेशी व राष्ट्रीय संस्कृति से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे थे और इस बात की कोशिश कर रहे थे कि पश्चिमी संस्कृति को अपने देश की संस्कृति का स्थान दे दें। इसके लिए उन्होंने अपने देश के युवाओं को बिगाड़ने तक में संकोच नहीं किया और शक्ति के बल पर महिलाओं के सिर से पर्दा उतरवा दिया और एक समय तो उन्होंने महिलाओं के लिए छोटे और खुले वस्त्र पहनना बाध्यकारी कर दिया था। ये सारे राष्ट्र व धर्म विरोधी कदम भी ईरान की मुस्लिम जनता को, जो इस्लाम व उसकी ईश्वरीय शिक्षाओं पर कटिबद्ध थी, धर्म से दूर नहीं कर सके।
पहलवी शासक महिलाओं के संबंध में बड़ी हीन दृष्टि रखते थे। उनका मानना था कि औरत मर्द की सेवा का एक साधन है। मोहम्मद रजा पहलवी ने एक इंटरव्यू में अपने इस पदभ्रष्ट दृष्टिकोण को खुल्लम खुल्ला बयान किया था और कहा था कि औरत मर्द के लिए एक साधन है और उसकी सुंदरता पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इसी तरह वो खुलकर कहता था कि महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में गतिविधियों की क्षमता नहीं रखती और उनमें संचालन की योग्यता कम होती है। मोहम्मद रजा शाह इस कमजोरी की वजह महिलाओं का षड्यंत्रकारी स्वभाव बताता था। उसने अपने एक अन्य इंटरव्यू में अधिक दुस्साहस के साथ कहा था कि महिलाओं की बुद्धि मूल रूप से पुरुषों से कम होती है, अलबत्ता कुछ महिलाएं इसका अपवाद हैं।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामिनई की नज़र में पहलवी शासन के पतन का एक अन्य कारण भारी घुटन था जो सरकार ने पैदा कर रखा था। इस प्रकार से कि किसी में भी सरकार की आलोचना करने का साहस नहीं था। वर्ष 1335 हिजरी शमसी में भयावह खुफिया संगठन सावा के गठन के साथ ही मोहम्मद रजा शाह की सरकार की ओर से दमन और घुटन की प्रक्रिया ने अधिक गति पकड़ ली। इस खुफिया संगठन को पहलवी शासन की रक्षा के लिए अमेरिका व ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसियों से बनाया गया था और उन्होंने ही इसके लोगों को ट्रेनिंग दी थी। अगले वर्षों में सवाक ने बंदियों के अधिकारों का अधिक से अधिक हनन करते हुए उन्हें बहुत अधिक यातनाएं दी। वर्ष 1335 से 1357 हिजरी शमसी के दौरान उसने शाह के विरोधियों के दमन में अत्यंत भयावह व अमानवीय भूमिका निभाई। उसने सरकार के विरोधियों और आलोचकों को इस प्रकार की यातनाएं दीं कि जो मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र का खुला हनन थी।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामिनई पहलवी शासन काल की भारी घुटन के बारे में कहते हैं, रजा खान भी विद्रोह के माध्यम से सत्ता में आया था और उसका बेटा मोहम्मद रजा भी विद्रोह द्वारा ही सत्ता में पहुंचा था। ये बात स्पष्ट है कि जो सरकार विद्रोह द्वारा सत्ता में आएगी वो कैसी होगी। वो लोगों पर थोपी गई थी और लोगों के मत, लोगों की आस्थाओं, लोगों की आशाओं, लोगों की संस्कृति, लोगों की इच्छाओं और लोगों के संकल्प से पूरी तरह दूर थी। इस सरकार के लोग जनता के मतों, इच्छाओं, आस्थाओं, धर्म और संस्कृति का तनिक भी सम्मान नहीं करते थे। उनका लोगों से किसी भी प्रकार का निकट व मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था, बल्कि शत्रुतापूर्ण रिश्ता था। स्वामी व प्रजा का रिश्ता था, मालिक और नौकर का रिश्ता था। वो सरकार राजशाही थी। राजशाही व तानाशाही का अर्थ यही होता है, एक ऐसी सरकार होती है जिसकी जनता के प्रति कोई कटिबद्धता नहीं होती। पहलवी परिवार ने हमारे देश में इस प्रकार जीवन बिताया। विश्वविद्यालय, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संसद और सरकार सब दिखावे के थे। केवल धर्म के नाम पर जो आंदोलन चल रहा था, जो सार्वजनिक था, वही सच्चाई थी और सरकार की ओर से उसे दुश्मनी और घृणा की नज़र से देखा जा सकता था।
पहलवी परिवार द्वारा किए गए विश्वासघातों में से एक, जिसके कारण उसका पतन हुआ, देश को विज्ञान व उद्योग के क्षेत्र में पीछे और जनता को मूल आवश्यकताओं से वंचित रखना था। रजा शाह और उसके बेटे ने, जो पश्चिम के पिट्ठू और उसकी संस्कृति पर मोहित थे, हम नहीं कर सकते और हमें पश्चिम से लेना चाहिए के प्रचार को अपनी मुख्य रणनीति बना रखा था। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने इस संबंध में कहा है कि पहलवी शासनकाल में सबसे अधिक प्रचलित प्रोपेगेंडा हम नहीं कर सकते था। इस तरह के विचारों का परिणाम ये था कि पहलवी शासकों ने इस बुद्धिमान, साहसी और सभ्यता व ज्ञान में अग्रणी राष्ट्र का धन अमेरिका से युद्धक विमान खरीदने पर खर्च किया। जब किसी विमान का कोई कलपुर्जा खराब हो जाता था, ईरानी इंजीनियर या मैकेनिक को इस बात का अधिकार नहीं था कि वो उस पुर्जे को खोले और उसे बनाने की कोशिश करे, क्योंकि कलपुर्जे जुड़े हुए होते थे। अर्थात कभी कभी विमान का कोई एक पुर्जा कई पुर्जों से मिलकर बना होता है। ईरान उस खराब पुर्जे को वापस भेजता था और उस विमान को बनाने और बेचने वाला देश, जो प्रायः अमेरिका होता था, उसके स्थान पर एक नया पुर्जा ईरान को बेचता था। ईरानी इंजीनियरों को विमान के खराब हो चुके पुर्जे को खोलने और मरम्मत करने का अधिकार क्यों नहीं था? इसलिए कि उनसे कहा जाता था कि तुम लोगों को इससे क्या लेना देना, ये काम तो विदेशी विशेषज्ञों का है, तुम लोग बिल्कुल हस्तक्षेप न करो और इस प्रकार के कामों के निकट भी न जाओ। एक राष्ट्र का अपमान, इसी को तो कहते हैं।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा खामेनेई की दृष्टि में ईरान की राजशाही सरकार के पतन का एक अन्य कारण देश में व्याप्त अत्याचार व अन्याय था। रजा शाह के शासनकाल में लोगों की जमीन हड़पना सरकार के एजेंडे में शामिल हो गया था। आरंभ में रजा खान के पास न धन था, न ही जमीन व संपत्ति। जैसे जैसे उसकी सरकार का कार्यकाल बढ़ता गया और उसकी शक्ति में वृद्धि होती गई, उसने देश के अनेक क्षेत्रों की उपजाऊ जमीनों और अहम संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उसने अपार धन एकत्रित किया। वो लोगों की संपत्ति और ज़मीनों को हड़पने, बेनाम संपत्तियों को जब्त करने, लोगों से अत्यंत कम कीमत पर ज़मीन खरीदने, खेती वाली ज़मीनों को उनके मालिकों से डरा धमका कर उनके वास्तविक मूल्य से कम में खरीदने और मारपीट कर लोगों की ज़मीन हथियाने जैसे मार्गों से ईरान का सबसे बड़ा ज़मींदार बन गया था।
रजा शाह अपने अधिकारियों को उत्तरी ईरान के क्षेत्रों में भेज कर उन्हें आदेश देता था कि उन्हें जो भी अच्छी ज़मीन और संपत्ति दिखाई दे, उसे उसके लिए ले लें। ईरान के एक मशहूर समाचार पत्र ने उस समय की परिस्थितियों के बारे में लिखा था, उत्तरी ईरान के असहाय किसानों की ऐसी स्थिति बना दी गई है कि उनके पास न पैरों में जूते हैं, न तन पर लिबास है और न घर में खाने को चावल। वे तेल न खरीद पाने के कारण रात से सुबह तक इतिहास पूर्व के इंसानों की तरह अंधेरे में बैठे रहते और फिर सो जाते हैं। रजा शाह लोगों की ज़मीन हड़प करने के बाद उनके मालिकों को प्रजा और मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करता था। बाद में वे अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए विवश थे।
ईरान का एक अन्य समाचार पत्र रजा शाह के शासनकाल में जनता की दयनीय स्थिति के बारे में लिखता है, प्रजा अपने पैसे खर्च करके 20 मील दूर जाने और जमींदारों के लिए काम करने पर विवश है। रजा शाह के गुर्गे लाठी और चाबुक से उनकी पिटाई करते हैं। मजदूरों को रात में तबेले में सोना और सुबह सवेरे उठना पड़ता है। उनमें से अधिकतर भूखे होते हैं। अगर उनमें से कोई बीमार होने की बात करे तो उसकी दवा और इलाज हंटर होता है, यहाँ तक कि वो अपनी जान से हाथ धो लेता है और उसे शाह के क्रूर गुर्गों से मुक्ति मिल जाती है। इन सारे अत्याचारों के अलावा उनके परिवार की इज्जत भी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि शाह ने अपने गुर्गों और एजेंटों को लोगों के माल और इज्जत से खेलने की इजाज़त दे रखी है।
रजा शाह के बेटे मोहम्मद रजा ने भी दूसरी तरह से अपने पिता के अत्याचारों को जारी रखा और उसके खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ती रही। जब लोगों ने इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी की पुकार सुनी तो उन्हें लगा कि उन्हें एक बड़ा मुक्तिदाता मिल गया है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई इस बारे में कहते हैं, सद्दाम शासन ने 8 वर्ष युद्ध में ईरानी राष्ट्र पर जो कुछ अत्याचार किया वो उन अत्याचारों से बहुत कम था जो पहलवी परिवार ने बरसों तक इस राष्ट्र पर किए थे। तो इस तरह की सरकार ने बरसों तक ईरानी जनता पर शासन किया था। जब वर्ष 1962 में इमाम खुमैनी ने शाह के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जनता के धैर्य का प्याला छलक गया। उन्होंने बरसों तक बर्दाश्त किया था लेकिन अब उनसे सहन नहीं हो रहा था और इमाम खुमैनी की पुकार उनके दिल में बैठ गई।